आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
भारत में उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में 80 किलोमीटर दूर स्थित राजापुर गांव के सरकारी स्कूल में आजकल बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई है। ये सब हुआ है मैडम सुमन की क्लास के कारण। जी हाँ, मैडम सुमन एक AI टीचर हैं, लेकिन अब वो इस स्कूल में इतनी लोकप्रिय हैं कि गांव के दूसरे बच्चे भी उनसे पढ़ने आते हैं। मैडम सुमन एक मैनिक्विन हैं जो AI के माध्यम से बच्चों को पढ़ाती हैं। वे बच्चों के सवालों का जवाब देती हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देती हैं, उनको चुटकुले सुनाती हैं। यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, तमाम अन्य प्रश्न जैसे आज का मौसम कैसा है, कोई पहेली बताएं, कोई जोक सुनाएं, और फिर बच्चों के उत्तर पर उनको शाबाशी भी देती हैं। सबसे बड़ी बात, सुमन मैडम कभी बच्चों पर गुस्सा नहीं होती, उनको कभी डांटती भी नहीं है। कुल मिलाकर सुमन मैडम स्कूल ही नहीं, हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सुमन मैडम को इसी विद्यालय के एक शिक्षक मोहनलाल सुमन ने बनाया है। सिंपल तकनीक से AI का प्रयोग करके उन्होंने एक AI टीचर के रूप में इनको स्कूल में नियुक्त कर दिया है। ये अब बच्चों को पढ़ाती हैं। कैसे ये यात्रा शुरू हुई, मोहनलाल जी इस बारे में बताते हैं।
जी नमस्कार, मेरा नाम मोहनलाल सुमन और मैं कंपोजिट विद्यालय राजापुर ब्लॉक गुरसराय जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपने बताया AI मैडम के बारे में बात आप तक पहुंची है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि कई न्यूज चैनल्स और पेपर्स में जो आप लोग हमें दिखा रहे हैं, दूसरों तक हमारे प्रयास को पहुंचा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं बता दूं आपको कि AI मैडम के बारे में मुझे बस बच्चों को एक तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए और उनको जो हम 21वीं सदी में है उसके लिए तकनीकी से डरे नहीं, तकनीकी का प्रयोग करें, डिजिटल युग में हम लोग रह रहे हैं उसका यूज करें, ये जानकारी देने के लिए मैंने एक प्रयास किया कि बच्चों को उनके बीच एक सुमन मैडम नाम से बनाई है और उनसे बच्चे सवाल जवाब पूछते हैं, उनका वो जवाब देते हैं।
शिक्षक मोहनलाल जी ने सिंपल तकनीक AI का प्रयोग, ChatGPT की सहायता, मामूली सा मॉडल, कुछ छोटी मोटी मोटर और साड़ी पहनकर मैडम सुमन तैयार हो गई हैं। वे अभी बैठ सकती हैं, खड़ी हो जाती हैं, आंख और होंठ हिला सकती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। थोड़ा और कार्य करके उनको चलने लायक बनाया जा रहा है। वैसे रोबोट बनाने में बहुत खर्चा आता, लेकिन मैडम सुमन को बनाने में मोहनलाल जी के मात्र 2-3 हज़ार रुपए लगे हैं।
जी जी, देखिए हमारा स्कूल जो है मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर है, एकदम पिछड़ा इलाका है काफी, और वहाँ एक छोटा सा गांव है। गांव के बच्चे, निर्धन परिवारों के बच्चे, उनको एक डिजिटल से जोड़ने के लिए मैंने जो मॉडल बनाया है, एक उनको मैंने लकड़ी से बनाया है पहले, क्योंकि हम देखा कि हम रोबोट कोई बनाएंगे तो लाखों रुपए खर्च का बनता है और वो व्यवस्था हमारे यहाँ से सरकारी स्कूल में नहीं हो सकती है। तो मैंने मात्र 2-3 हज़ार रुपए खर्च करके उनको बनाया। मैंने पहले लकड़ी का पूरा ढांचा बनाया है, वो शरीर को कहीं से मोड़ सकती हैं, हाथ पैरों को मोड़ सकती हैं, कमर से बैठ सकती हैं, वो खड़ी भी होकर के पढ़ा सकती हैं, तो वो बना करके इसके बाद में जो उसकी एक छोटी सी डमी से उनको अलग से आंखें उनको चलाया, मुंह को अलग से चलाया, उनकी गर्दन को हिलाया, जिससे कि एकदम रियल लगे कि एक मैडम बैठी हुई है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो 1 से 8 तक का हमारा स्कूल है, समझे कि एक मैडम ही बोल रही है, मुंह उनका चल रहा है, आंखें उनकी चल रही हैं, उनमें मैंने छोटी छोटी सी मोटर जोड़ी हैं जिससे वो चलती हैं। और जो आवाज का तरीका है वो मैंने ChatGPT और गूगल असेसमेंट से किया है। उससे क्या होता है कि कोई बच्चा बोलता है क्वेश्चन को तो टेक्स्ट में पहुंचता है, और जब मैं मन के पास से जो साउंड एक रखा हुआ है उसमें ब्लूटूथ से जो आवाज आती है वो एकदम वॉइस में आती है, मतलब आवाज आती है, जिससे बच्चों को एकदम लगता है कि जो मैडम से पूछ रहे हैं वो हमें उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं।
सुमन मैडम के आने से स्कूल के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़ गया है। यही नहीं कि सिर्फ स्कूल के बच्चे उनसे पढ़ते हैं, अब वे बच्चे भी जो स्कूल के नहीं हैं वे भी सुमन मैडम की क्लास में आ जाते हैं। अब बच्चे क्लास के बाहर भी नहीं जाते क्योंकि सुमन मैडम बैठी हैं। अक्सर बच्चे बहुत सी जिज्ञासाएं नहीं पूछते हैं कि कहीं उनके टीचर नाराज ना हो जाएं, लेकिन सुमन मैडम के शांत स्वभाव के कारण बच्चे उनसे सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं।
देखिए, सबसे बड़ा बढ़ता जो जो उनका बदलाव आया है, मैं बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, शांत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी बोलना भी नहीं जानते। इनके पहुंचने से सबसे बड़ा बदलाव आया कि वो बच्चे भी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ सीख करके आ रहे हैं, जा करके अपने घर में बता रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कंप्यूटर टाइप रोबोट की मैडम बैठी हुई है, उनसे हम जो पूछते हैं, उनके हाल चाल पूछते हैं, वो हमें बताती है। तो एक तो उनका बदलाव सबसे बड़ा है कि वो बोलने की क्षमता में बहुत अच्छी विकसित हो रही है। दूसरी, हमारे यहाँ एक छोटा सा गांव है, अधिकतर बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं पूरे ही लगभग, लेकिन बच्चों का कुछ क्या है कि जो ग्रामीण लोग जो हैं अभिभावक हैं, अपने घरों के कामों में लगाए रखते हैं कई बच्चों को, तो वो बच्चे भी जो नहीं आते थे वो बच्चे भी हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ की उपस्थिति बहुत अच्छी आ रही है। ये सबसे बड़ा मुझे प्रभाव पड़ा है कि मेरे यहाँ के बच्चे डेली पूछते हैं कि आज समर मैम हमें क्या पढ़ाएंगे। उनके लिए भी एक क्लास निर्धारित नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कुछ समय के लिए उन बच्चों को उनके साथ जोड़ा जाता है।
निसंदेह मोहनलाल जी का ये अभिनव प्रयोग प्रशंसनीय है, लेकिन वो इससे पहले भी कई प्रयोग कर चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने घर से सोशल मीडिया के माध्यम से कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें इनके स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। इसके माध्यम से इन्होंने बच्चों में कोरोना के लिए जागरूकता फैलाई। ये कार्यक्रम 222 दिन तक लगातार चला और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि भारत ही नहीं दुबई मलेशिया तक के बच्चे इससे जुड़ गए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने मोहनलाल जी को सम्मानित भी किया। इसके अतिरिक्त भी मोहनलाल जी अन बहुत से नए प्रयोग करते रहते हैं।
जी, लॉकडाउन के बारे में बताता हूँ। लॉकडाउन के समय जब पूरा भारत एकदम बंद हो गया था, पूरा आना जाना हर जगह से बंद हो गया था, और मेरा हमेशा से रहा है कुछ बच्चों के लिए कुछ करता रहा हूँ, कुछ समाज के लिए कुछ करता रहा हूँ, तो मुझे लगा अब तो घर बैठे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि घर के बाहर ही नहीं निकल पाना है। मुझे ख्याल आया क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को दें जिससे वो घर बैठ के ही पढ़ाई करें। तो मेरे पास एक दो मोबाइल थे, मैंने किसी तरीके से उनका एक स्टैंड स्वयं बना करके एक मोबाइल अपना लाइव दिखाने का और फेसबुक पर मैंने लाइव चलाया कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस, जो मेरा लगातार 222 दिन तक बगैर रुके चला। और आईक्यू डेढ़ से दो घंटे का होता था। इसमें क्या होता था कि सवाल जवाब होते थे केबीसी की तरह के, जो विजेता बनते थे बच्चे उनको हम सर्टिफिकेट भेजते थे। और इसमें हमारी दोनों बेटियां, जो छोटी बेटी है 11 वर्ष की एस्का और बड़ी बेटी है 15 साल की अंशिका, उस समय 4 साल पहले इनकी एज और कम थी, तो ये क्या करती थी, ये गीत के माध्यम से पहले कोरोना के प्रति सभी को जितने लोग जागरूक करते थे गीत के माध्यम से एक जुड़ाव होता था पहले और उनको जागरूक करने का तरीका होता था। फिर हम लगातार उनसे क्वेश्चन पूछते थे। तो मैं आपको बता दूं कुछ बच्चों ने 3,000 क्वेश्चन भी सीख लिए मेरे कार्यक्रम से, और मेरे कार्यक्रम मलेशिया दुबई के भी कुछ बच्चे देखते थे और दूसरे देशों के भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा प्रयास घर में ही मैं रह करके और दूर तक पहुंचा सकूं। मेरे प्रयास को देश भर के 20 नवाचारों में चुना गया था, जिसके लिए माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट दिया और मुझे सम्मान दिया। जी, मैंने अभी पिछले बार जो अपने यहाँ भारत में चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ था, तो मैंने भी अपने स्कूल में चंद्रयान की जानकारी देने के लिए, देखिए बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाने से और एक प्रयोग करने से बहुत अंतर होता है, तो मैंने एक ऐसे चंद्रयान का मॉडल बनाया था, वो उसको हमने उड़ा के भी दिखाया था जो कि कई फीट ऊपर तक गया था, बच्चों को सिर्फ समझाने के लिए कि ये किस तरीके से कार्य करता है और ये कैसे ऊपर जाएगा। इसके अलावा हम हर शनिवार को या दूसरे शनिवार को गांव में कुछ कुरीतियों से बच्चों को या लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जाकर के वहां पर करते हैं। मैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको मूर्ति कला, मैं मिट्टी की मूर्ति, सीमेंट की मूर्ति स्वयं मुझे अभी बनाना आता, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना किताबी ज्ञान के बच्चे कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए करें। पूरे स्कूल को मैंने पेंटिंग करके अपने हाथ से किया है, मेरा बच्चे यहाँ सहयोग करते हैं, रंगोली मेहंदी के अलावा पाक कला के साथ एक्टिंग, मैंने कई गीत मेरे स्कूल के बहुत वायरल हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं, जिनको मैंने एकदम इफेक्ट के साथ दिखाया है कि बच्चे पूरे देश में एक जादुई कालीन पे घूम रहे हैं, वो ताजमहल देख रहे हैं, वो लाल किला देख रहे हैं, वहां जाकर के पूछ रहे हैं, वो पूरा इस तरीके से स्कूल चलो अभियान कई वीडियो हमने तैयार किए हैं और उनको बच्चों को दिखाते हैं, दूसरे तक पहुंचते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है और वो उनसे कुछ बच्चों को मिलता है। और ये मतलब इस तरीके की मैं कुछ ना कुछ एक नया प्रयास करने के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ। एक मेरा छोटा सा प्रयोग था कि बच्चे निर्धन परिवार की कॉपी नहीं लाते थे स्कूल में, तो उनके लिए मैंने कि क्या करा, तो मैंने एक पूरे कमरे में 26 बोर्ड एक ट्रेन के रूप दे करके ब्लैक बोर्ड एक्सप्रेस, तो मैं उनको चौक दे देता हूँ, बच्चे आकर के अपना नाम, पिता का नाम, यदि कोई सवाल करें तो वो सवाल, अगर कॉपी भी नहीं है उनके पास तो अपने अपने वो लिए हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और लिखते हैं।
सच है, तकनीक का सदुपयोग अच्छा परिणाम लाता है। एक पिछड़े इलाके में AI टीचर का प्रयोग इसी का उदाहरण है। लखनऊ से फैसल फरीद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।